पहला राजा अध्याय छह। अध्याय छह में वो भवन बनाना आरंभ करता है। अध्याय छह पद एक और दो। इसराइलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष के बाद, जो सुलेमान के इसराइल पर राज्य करने का चौथा वर्ष था, उसके जीव नाम दूसरे महीने में वो यहोवा का भवन बनाने लगा। और जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए बनाया, उसकी लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। अब आप कल्पना करें कि सुलेमान के मंदिर की लंबाई 90 फुट, चौड़ाई 30 फुट और ऊंचाई 45 फुट थी। उसकी लंबाई चौड़ाई की तुलना में अधिक थी, क्योंकि उसमें विभाजन करके महापवित्र स्थान बनाया गया था, जिसके दरवाजे जैतून की लकड़ी पर बूटेदारी करके बनाए गए थे और उस पर सोना चढ़ाया गया था। अध्याय छह मंदिर का विवरण देता है। पद सात में हमें बताया गया है, अध्याय छह पद सात, और बनते समय भवन ऐसे पत्रों को बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, वसूली या किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। पत्थर को तराशने का सारा काम खानों पर किया गया जो शहर के बाहर थी। वहीं पर पत्थरों को ठीक नाप करके काटा और तराशा जाता था। मंदिर के स्थान पर पहुंचने के बाद पत्थरों को बस उनकी जगह रख दिया जाता था। इसलिए मंदिर के निर्माण में हथौड़ा या औजारों की बिल्कुल आवाज नहीं हुई। मैं आपको एक रोचक कहानी सुनाता हूं जो मंदिर के निर्माण के बारे में बताई जाती है। हर एक पत्थर जो मंदिर के लिए तराशा जाता था, उसका इमारत में एक विशेष स्थान होता था, और उसके स्थान को उस पर लिखकर निर्माण स्थल पर भेजा जाता था, जो चिन्ह के रूप में उस पर अंकित होता था। राजमिस्त्री उस पर लगे चिन्ह को देखकर समझ जाता था कि वो पत्थर कहाँ लगना है। इन पत्थरों के साथ एक ऐसा पत्थर खान से आ गया जो उस समय किसी स्थान में नहीं लग रहा था। राजमिस्त्रियों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो पत्थर कहाँ लगेगा, इसलिए उन्होंने उसे अलग रख दिया और दूसरे पत्थरों को अपने अपने स्थान पर लगाने लगे। मंदिर के निर्माण में 7 वर्ष लगे। इस बीच घास, मिट्टी और पौधों ने उस पत्थर को ढांक दिया। अब मंदिर तैयार होने पर आया, तब अधिकारी ने खान पर संदेश भेजा, हम कोने का पत्थर लगाने को तैयार हैं, भवन का मुख्य पत्थर कहाँ है? और खान से उत्तर आया, वो पत्थर भेजा जा चुका है। उन्होंने उत्तर दिया, वो पत्थर यहाँ नहीं, उसकी खोज करो। तब किसी को याद आया कि एक समय ऐसा पत्थर आया था जो किसी काम का नहीं था, इसलिए राजमिस्त्रियों ने उसे एक और रखवा दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही कोने का पत्थर हो? उन्होंने उसकी खोज की तो देखा कि एक पत्थर झाड़ियों में मिट्टी के नीचे दबा पड़ा है। जब उसे वहां से निकाला गया तो पता चला कि वही कोने का पत्थर था जिसे राजमिस्त्रियां निकम्मा जानकर अलग कर दिया था। पत्रस ने यही बात यहूदियों की महासभा के सामने कही, जब उसने मंदिर के सामने लंगड़े आदमी को चंगा किया था। जब वो यहूदियों की महासभा के सामने खड़ा था, उसने कहा, यदि तुम लोग मुझे आज कैद करने पर हो, क्योंकि मैंने लंगड़े मनुष्य के साथ भलाई की है, तो तुम जानो। परंतु क्या तुम जानना चाहते हो कि कौन सी शक्ति और अधिकार से मैंने उसे चंगा कर दिया? तो तुम्हें ज्ञात हो कि यीशु मसीह नासरी के नाम से ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यही वो पत्थर है जिसे राज मिस्त्रियों ने अस्वीकार कर दिया, उसी को परमेश्वर ने कोने का मुख्य पत्थर बनाया। वो उन्हें कहानी सुना रहा था कि कैसे एक पत्थर को अस्वीकार कर दिया था, परंतु वही कोने का मुख्य पत्थर हो गया। ये एक भजन है, परंतु पत्रस दिखाता है कि वास्तव में यह यीशु मसीह का रूपक है। इसराइल के धर्म के प्रधानों ने यीशु को निकम्मा ठहराया, परंतु वो परमेश्वर का कोने का पत्थर था। इसी पत्थर के विषय में ये भजन लिखा गया था और पत्रस ने उसे चुना। अब फिर परमेश्वर सुलेमान से कहता है, 6 अध्याय पद 11 और 12। तब यहोवा का ये वचन सुलेमान के पास पहुंचा कि ये भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा। फिर परमेश्वर की एक शर्त, 6 पद 12 और 13। और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था, उसको मैं पूरा करूंगा, और मैं इसराइलियों के मध्य में निवास करूंगा और अपनी इसराइली प्रजा को न तजूंगा। परमेश्वर ने सुलेमान को शर्त के साथ ये प्रतिज्ञा दी थी कि परमेश्वर अपनी प्रजा के मध्य वास करेगा। वे मंदिर इसलिए नहीं बनाते थे कि उसमें आराधना करें या एकत्रित हो। मंदिर बनाने में उनका विचार ये होता था कि परमेश्वर के निवास के लिए पृथ्वी पर एक स्थान हो। दाऊद ने कहा था, ये ठीक नहीं कि मैं घर में रहता हूं जो हर तरह से सुंदर और सुरक्षित है, और परमेश्वर अब भी तंबू में रहता है। मैं परमेश्वर के लिए घर बनाऊंगा। हम जब चर्च बनाते हैं, हम लोगों के स्थान के बारे में सोचते हैं, ताकि हम सब जमा होकर वहां परमेश्वर की उपासना और वचन का अध्ययन करें, कि परमेश्वर के बारे में अपने ज्ञान और अपनी समझ को बढ़ा सके। परंतु उन दिनों में ऐसा नहीं था। उनके मंदिर बनाने का उद्देश्य परमेश्वर के लिए घर बनाने का था, जिसमें कोई साधारण व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। केवल याजक अंदर जाकर परमेश्वर की सेवा कर सकते थे। साधारण व्यक्ति आंगन तक ही जा सकते थे। आराधनालय में केवल याजक ही प्रवेश कर सकता था। वो आज के आराधनालयों जैसे उपासना का केंद्र नहीं होता था। हमारा उद्देश्य लोगों को एकत्रित करके उपासना करने का होता है। उनका उद्देश्य परमेश्वर के रहने के लिए भवन बनाना होता था। परंतु जब सुलेमान मंदिर बना चुका, तब उसने देखा कि वे कैसे मूर्ख हैं। इसलिए उसने कहा, परमेश्वर, जब मैं स्वर्ग को देखता हूं तो जानता हूं कि तेरे लिए स्वर्गों में स्वर्ग भी काफी नहीं है। ये कितना छोटा घर मैंने यहां बनाया है। और हम ये भी जानते हैं, प्रेरितों के काम 7:48, परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, परंतु वो वास्तव में हमारे हृदय और जीवन में रहता है। जो विश्व में व्याप्त है, वही आज रात मेरे जीवन में भी समा जाएगा, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जहां परमेश्वर और उसका आत्मा वास करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के रहने के लिए घर बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम स्थान बनाते हैं जहां हम इकट्ठे होकर परमेश्वर को स्वीकार करें और उसकी उपासना करें। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं अपने लोगों के मध्य में निवास करूंगा। जब तक वे मेरी सब आज्ञाओं पर चलते हुए उनका पालन करते रहेंगे, मैं उनके मध्य रहूंगा और उन्हें न तजूंगा। वो परमेश्वर के भवन के बारे में और परम पवित्र स्थान के बारे में बताता है, जो 90 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा था और दो करूबों को बनवाकर परम पवित्र स्थान में रखवा दिया, जो जलपाई की लकड़ी से तरश कर बनाए गए थे, जिनको सोने से मढ़वाया गया और उसके खुले परों की लंबाई 10 फुट थी, जो काफी बड़े करूब थे। उन्हें परम पवित्र स्थान में रखवाया गया। इसके अतिरिक्त वहां मात्र वाचा का संदूक था, जिस पर सोना चढ़ाया और वो सुनहरे करूबों के बीच में रखा था। अब ध्यान दीजिए कि मिलाप का तंबू स्वर्ग का नमूना था और मंदिर मिलाप के तंबू के नमूने पर खड़ा किया गया था। इसमें पवित्र स्थान बाहर की ओर था, जहां याजक दैनिक बलिदान चढ़ाता था और दया आसन पर लहू छिड़कता था। महापवित्र स्थान जहां वाचा का संदूक था, वो पूरा सोने से ढका हुआ था। वाचा का संदूक सोने के करूबों के बीच रखा हुआ था। वाचा का संदूक नबुकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम के घेराव के समय खो गया था, वरन छिपा दिया गया था। ऐसी अफवाह है कि यिर्मयाह ने वाचा का संदूक छिपा दिया था, परंतु वो हेरोद के मंदिर में नहीं था, वो संसार में कहीं न कहीं आज भी रखा है। पुरातत्व वैज्ञानिकों के लिए उसे ढूंढ लेना एक आश्चर्य कर्म होगा, क्योंकि उसमें परमेश्वर के द्वारा लिखी 10 आज्ञाओं की पट्टियां हैं, जो पत्थर की है। ये कैसा वशीभूत करने वाला अनुभव होगा जब वो छोटा सोने का संदूक, जिसमें अनोखी लिखाई वाले 2 पत्थर मिलेंगे। बस यही एक चीज महापवित्र स्थान में रखी गई थी और सुलेमान को इसे बनाने में 7 वर्ष लगे। सब चीजें सोने से मढ़वाई गई थी और लकड़ी के तख्ते भी सोने से मढ़वाए गए। ये जो भव्य रूप से सुंदर और मूल्यवान होगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि अरबों रुपए का सोना वहां लगाया गया था। इस प्रकार से अध्याय में मंदिर का नाप और साज सज्जा का विवरण है और बाकी आप पढ़कर देख लीजिए। अध्याय 6 के अंत तक मंदिर निर्माण के 7 वर्षों का इतिहास है।